एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
अगर हम
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर और उन्हें तेरा रास्ता में अगुवाई कर। मेरे संग ओ पिता तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है पाप मुक्ति। भविष्यवक्ता यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में एक दिलचस्प बात बोलता है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना बिलाप, और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्यारो, लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर बुराई की शुरुआत क्यों हुई। जवाब का केंद्र बिंदु है आजादी, सच्ची आजादी। सच्ची नैतिक आजादी में जोखिम शामिल है, क्योंकि अगर व्यक्ति या प्राणी वास्तव में स्वतंत्र है तो उनके पास गलत काम करने का विकल्प होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न यह उठता है, फिर जब उन्होंने गलत किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं मिटा दिया और हम में से बाकी लोगों को विद्रोह के भयानक परिणामों से क्यों नहीं बचा लिया। इसका उत्तर महान विवाद के मूल तक जाता है। जैसा कि हम आज देखेंगे, प्रभु एक तरह की खुली सरकार चलाते हैं, और यद्यपि उनके और उनके तरीकों के बारे में बहुत कुछ रहस्यमय है, वे इस महान विवाद को इस तरह से सुलझाएंगे कि उनके आत्मत्याग, भलाई, न्याय, प्रेम और कानून के बारे में सभी प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वास्तव में हमें उत्तर पाने के लिए 1000 साल दिए जाएंगे, कम से कम खोए हुए लोगों के भाग्य के बारे में उत्तर पाने के लिए, और बाकी के लिए हमारे पास अनंत काल का समय होगा। दूसरे आगमन के बाद बचाए गए लोग 1000 साल तक मसीह के साथ रहेंगे और राज करेंगे, यह बाइबल कहती है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि न्याय में उनकी सक्रिय भूमिका होगी। आइए हम महान विवाद के लंबे समय तक चलने वाले नाटक के अंतिम चरणों को देखें। पहला हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 1-3 में। वहां हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि शैतान को 1000 वर्षों के लिए बांधा जाएगा, जबकि वह किसी को परीक्षा नहीं कर सकेगा। बाइबल में बांधना या बंधे रहना कई तरह से इस्तेमाल किया गया है। सबसे सरल स्तर पर यह एक कैदी पर लागू होता है। यीशु ने शैतान द्वारा बंधे हुए कई लोगों को भी आजाद किया था। जब कोई खतरनाक अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे बांधना जरूरी होता है। हालांकि बाइबल में कई बार जब लोगों को बांधा जाता है तो वे शायद ही अपराधी होते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसलिए जंजीरों में बांध दिया गया क्योंकि उसने राजा की नैतिक बुराइयों की निंदा की थी। यह हम पाते हैं मत्ती 14:3-4 पद में। पौलुस भी उसे बांधा गया था। इसको हम पाते हैं प्रेरितों की काम 21:33 में। और पत्रस को भी बांधा गया था। हालांकि पौलुस और प्रेरित कोई गलती नहीं किए थे, वे लोग परमेश्वर के काम कर रहे थे, वे परमेश्वर के प्रचार कर रहे थे। पत्रस को बांधा जाने के बारे में प्रेरितों 12:6 में हम पाते हैं ये लोग परमेश्वर के भक्त थे, बिना गुनाह के उन्हें बांधा गया था। यीशु ने उन लोगों के साथ भी बहुत समय बिताया जिन्हें शैतान ने बांध रखा था। एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति था जिसकी कलाइयों और टखनों पर टूटी हुई जंजीरें बंधी थी। यह हम पाते हैं मरकुस 5:3-4 पद में। यीशु द्वारा उसे दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने से पहले कोई भी बुराई को रोक नहीं सकता था। फिर बरअब्बा था जो जंजीरों से बंधा होने के बावजूद इसलिए मुक्त किया गया ताकि उसे नहीं बल्कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। यह बात हम मरकुस 15:7-15 पद में पाते हैं। इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि शैतान या तो लोगों को कष्टों में कैद रखने की कोशिश कर रहा है या निर्दोषों को बांध रहा है ताकि बुराई को पनपने दिया जा सके। अंत में शैतान को बांधकर बाहरी अंधकार में डाल दिया जाता है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य 20:1-3 में पढ़ते हैं। पौलुस ने लिखा है 2 तिमोथियस 2:9 में कि परमेश्वर का वचन बंधन में नहीं है। यह वह साधन है जिसके द्वारा यीशु ने शैतान को चुप कराया। हम इसका उदाहरण पाते हैं मत्ती 4:4-10 में, जब उन्होंने शैतान को बाइबल से, शास्त्र से जवाब दिया और उसे हराया। और हम भी उसका विरोध करने के लिए उसी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आप बाइबल की प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं जो आपको उन सभी बंधनों से मुक्त कर देंगी जिन्हें दुष्ट आपको बांधना चाहता है। आपको कई बार क्यों प्रश्न आए होंगे, है ना? आप उसके लिए क्या किए होंगे? उधार पाए लोगों के पास भी क्यों प्रश्न हो सकते हैं? आइए देखते हैं परमेश्वर इनका कैसे समाधान करते हैं। दूसरे आगमन के नाटकीय और सार्वभौमिक प्रभाव यहाँ प्रकाशित वाक्य में क्या हो रहा है, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले यीशु अपने अनुयायियों को उस स्थान पर ले जाने का वादा करता है जिसे तैयार करने के लिए उसने पृथ्वी छोड़ी थी। इसे हम पाते हैं यूहन्ना 14:1-3 में। पौलुस ने विस्तार से बताया कि उन अनुयायियों में जीवित लोग और वे लोग शामिल हैं जिन्हें उनकी कब्रों से पुनर्जीवित किया गया है, 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। यूहन्ना ने एक और विवरण जोड़ा, दूसरे आगमन पर पहले पुनरुत्थान के बाद शेष मृतक 1000 साल के अंत तक मृत ही रहेंगे। यह हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 20:5 पद में। प्रकाशित वाक्य 20:4 में पढ़ने से हम पाते हैं कि उधार पाए लोगों को न्याय का काम सौंपा गया। अब उनके पास जितनी जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त किए बिना वे कैसे न्याय कर सकते थे? दुष्टों के अंतिम विनाश से पहले बचाए गए लोगों को उनके कई क्यों सवालों के जवाब पाने का अवसर दिया जाता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि छुड़ाए गए लोग खोए हुए लोगों का न्याय करने में भी भूमिका निभाते हैं। वे मसीह के साथ मिलकर दुष्टों का न्याय करते हैं, उनके कामों की तुलना कानून की किताब बाइबल से करते हैं और शरीर में किए गए कामों के अनुसार हर मामले का फैसला करते हैं। फिर दुष्टों को जो भाग भुगतना पड़ता है वह उनके कामों के अनुसार तय किया जाता है और यह उनके नामों के सामने मृत्यु की पुस्तक में दर्ज किया जाता है, कहती है वन एलन जी वाइट, पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी के पृष्ठ 661 में। रिकॉर्ड खोलने के इस समय के दौरान हम अनगिनत बार देखेंगे कि परमेश्वर की शांत आवाज ने खोए हुए लोगों को दया और प्रेम के शब्दों के साथ बुलाया। वह कितने धैर्य से दृढ़ रहा, केवल बार बार उन चीजों की आवाज में डूब जाने के लिए जिन्हें यह दुनिया वांछनीय मानती है। चुपचाप उसने इंतजार किया या अवसर की लालसा की कि उसे पहचाना जाए जिसने अनंत कीमत चुकाई ताकि वे जीवन पा सकें, लेकिन इसके बजाय उन्होंने मृत्यु को चुना। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आपको उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक रही है? वो अभी भी धैर्यपूर्वक आपका इंतजार कर रहा है। आप उसके पास आइए, आप जीवन चुनिए। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 15 में हजार वर्षों के बारे में बताया गया है, इसलिए यह विशेष न्याय उसी समय अवधि में घटित होता है। यह वही दृश्य नहीं है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 20 का 4 में किया गया है, यहाँ कई सिंहासन हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20 का 11 में केवल एक ही सिंहासन है। हजार वर्षों की शुरुआत में होने के बजाय यह अंत में है, दूसरे पुनर्थान के बाद, जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 5 पद में। और शैतान द्वारा बचाए ना गए लोगों की सेना को पवित्र शहर को घेरने के लिए मना लेने के बाद, प्रकाशित वाक्य 20 का 7-9, उस समय शहर के ऊपर परमेश्वर का महान श्वेत सिंहासन दिखाई देता है। हर व्यक्ति मौजूद है जो कभी पैदा हुआ है, कुछ शहर के अंदर कुछ बाहर। यह वह समय है जिसके बारे में यीशु ने बात की थी जब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर से पूछेंगे कि वे परमेश्वर के राज में क्यों नहीं पहुंचे। यह हम पाते हैं मत्ती 7 का 22 और 23 पद में। यह वह समय भी है जिसके बारे में पौलुस ने कहा था कि एक दिन प्रत्येक घुटना यीशु के सामने टिकेगा, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, और प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, फिलिप्पियों 2:9-11। न्याय का उद्देश्य परमेश्वर को कुछ भी सिखाना नहीं है जो वह पहले से नहीं जानता है, क्योंकि वह पहले से ही सब कुछ जानता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई ठीक से जानता हो कि परमेश्वर ने जिस तरह से न्याय किया है वह क्यों किया है। हर व्यक्ति, हर स्वर्गदूत यह कहने में सक्षम होगा, हे पवित्र परमेश्वर, तू जो है और जो था, इन निर्णयों में न्यायी है। प्रकाशित वाक्य 16:5। बचाए गए और खोए हुए मनुष्यों और स्वर्गदूतों दोनों में परमेश्वर के न्याय और धार्मिकता को देखेंगे। इस नाटक में अंतिम कार्य मृत्यु और अधोलोक का विनाश है, साथ ही वे जो जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। प्रकाशित वाक्य 20:14-15। यीशु के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, कहता है प्रकाशित वाक्य 1:18। इनमें से किसी के भी अब अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। अनंत पीड़ा का सामना करने के बजाय, जैसा कि आमतौर पर सिखाया जाता है, खोए हुए लोग नष्ट हो जाते हैं, वे हमेशा के लिए अस्तित्व में नहीं रहते, जो अनंत जीवन के विपरीत है। फिर प्रकाशित वाक्य 21:22 में यहूना नया आकाश और नई पृथ्वी का वर्णन करता है। जब यहूना नए आकाश के साथ साथ नई पृथ्वी का वर्णन करता है तो वह पत्रस द्वारा कही गई बात को दोहराता है। आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ चला जाएगा और तत्व बहुत ही अधिक गर्मी से पिघल जाएंगे, कहता है दूसरा पत्रस 3:10 पद में। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, पृथ्वी को सिर्फ बदलाव से कहीं ज्यादा की जरूरत है। यहाँ सब कुछ पूरी तरह से नष्ट होने जा रहा है ताकि एक नए अस्तित्व के लिए रास्ता बनाया जा सके। नया यरूशलेम अविश्वसनीय रूप से शानदार लगता है प्यारो। इसे बाइबल के समय के शहर के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि यूहन्ना को इसके बारे में सिर्फ यही पता था। हमारा दिमाग इन विवरणों को मुश्किल से समझ पाता है, लेकिन हमारी कल्पना को इस बात पर केंद्रित करना कितना मजेदार है कि हमारे लिए क्या रखा है। हम मुश्किल से इसकी कल्पना कर पाते हैं। साथ ही शहर के विशाल आयाम हमें बताते हैं कि यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। भाइयों, यहाँ हर किसी के लिए जगह है। प्रकाशित वाक्य 21 का 3-5 में कहता है, परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ देंगे। मृत्यु, दुख या रोना रहित दुनिया की कल्पना करना कठिन है। दर्द, पसीना, आंसू और मृत्यु पतन के बाद से ही मानव जाति के लिए सामान्य बात रही है। फिर भी उस समय से परमेश्वर ने मानव जाति को आश्वस्त किया है कि असफलता और हानि ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर ने रास्ते में छोटे छोटे संकेत दिए हैं कि वह एक दिन हमें छुड़ाएगा और अपनी उपस्थिति से हमें आशीर्वाद देगा। परमेश्वर ऐसा सबसे पहले एक उदाहरण की प्रतिज्ञा के द्वारा करता है जो हम उत्पत्ति 3:15 में पाते हैं, फिर एक तंबू में अपनी उपस्थिति के आश्वासन के द्वारा जिसे हम निर्गमन 25:8 में पाते हैं, फिर वचन के देहधारी होने और हमारे बीच तंबू खड़ा करने की वास्तविकता के द्वारा यह हमें मिलता है यूहन्ना 1:14 में, और अंततः हमारे बीच ब्राह्मण के सिंहासन को रखकर प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है। बाइबल की कई आयतें इस वाचा के आश्वासन का सारांश देती है जिसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा। एक उदाहरण है, मैं उनके साथ रहूंगा और उनके बीच चलूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 पद में यीशु पहली बार टूटी हुई वाचा के प्रभावों को बेअसर करने के लिए आए थे। यीशु को धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 21:3 हमें बाइबल का चरमोत्कर्ष देता है। शायद आंसू वही हैं जो हम खोए हुए लोगों के अंतिम विनाश पर बहाते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं उन्हें मिटा देता है और दुख और पीड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ये किताबें हमें बताते हैं कि स्वर्ग में पहुंचने के बाद हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता महसूस करेंगे। हालांकि हमें उसके साथ उस तरह का रिश्ता बनाने के लिए तब तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप और मैं अभी भी प्रभु के साथ निकटता से चल सकते हैं। सहस्त्राब्दी के बारे में और इसके बारे में हमारी समझ के बारे में सोचें। हालांकि हमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हमें कुछ बातें जानने के लिए पर्याप्त बताया गया है। सबसे पहले सहस्त्राब्दी, जो कि 1000 वर्ष का समय है यीशु मसीह के पहले आगमन और यीशु मसीह के तीसरे आगमन के बीच, खोए हुए लोगों के अंतिम विनाश से पहले होती है। दूसरी, उस अंतिम विनाश से पहले बचाए गए लोग इस समय को बहुत सारे सवालों के जवाब पाने में बिताते हैं, इतना कि वे खुद उस न्याय में भाग लेने में मदद करते हैं, यानी वे खुद न्याय कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि संत दुनिया का न्याय करेंगे, 1 कुरिन्थियों 6:2 कहता है, और क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:3 में। साथ ही जैसा कि हमने आज देखा, इस 1000 साल के दौरान न्याय उन पर सौंपा गया था, प्रकाशित वाक्य 20:4 पद, यानी संत लोगों पर। इस प्रकार ये दोनों बिंदु एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हैं। खोए हुए लोगों में से कोई भी सहस्त्राब्दी के बाद तक अंतिम न्याय का सामना नहीं करेगा, जब तक कि बचाए लोग न केवल यह समझ लें कि दुष्ट क्यों खो गए हैं, बल्कि उन पर न्याय पारित करने में भी भूमिका निभाएं। इस बारे में सोचे कि यह हमें परमेश्वर के चरित्र और उसकी सरकार की खुलेपन के बारे में क्या बताता है। इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति खोए हुए लोगों के अंतिम भाग्य का सामना करे, परमेश्वर के लोग उन पर परमेश्वर के अंतिम न्याय के न्याय और निष्पक्षता को बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। यह निश्चित रूप से दर्दनाक होने वाला है, लेकिन जब यह समाप्त हो जाएगा, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हम चिल्लाएंगे, हे पवित्र, तू इन न्यायों में न्यायी है, तू जो है और जो था। प्रकाशित वाक्य 6:5। ये शब्द सब बचाए हुए लोग कहेंगे, धर्मी लोग कहेंगे कि परमेश्वर न्यायी है। प्यारो भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी आपको और मुझे बुला रहा है। यदि हम उसे नहीं पहचाने हैं, उसे नहीं अपनाए हैं, वह हमें बुला रहा है कि हम पाप को छोड़े और उसके पास आए, कि हम उद्धार पाए और जीवन पाए। वह हमें अनंत जीवन देने चाहता है। परमेश्वर किसी को मरने देखने नहीं चाहता है, लेकिन वह किसी को जबरदस्ती नहीं करेगा। आपका और मेरा यह चुनाव की शक्ति है। आइए हम यह चुनाव का शक्ति इस्तेमाल करके परमेश्वर और उसके वचन को अपनाएं और उसके रास्ता को अपनाएं कि हम उद्धार पा सके। परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, वह किसी को बिना समय दिए और बिना उनके खुद के निर्णय के वह किसी को मौत में जाने नहीं देता है। आइए हम उसके पास आए और उसे उद्धार पाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, तो महान और पवित्र और न्यायी है। हम सब तेरे वचनों को सुने हैं पिता परमेश्वर, हमें आशीषित कर। हम तेरे पास आना चाहते हैं। हम सबों को तू तेरे वचन के द्वारा तेरे पास आकर्षित कर और हमें तेरे नज़दीक ला और हम सबों को तू बचा ले। पिता परमेश्वर, हम तुझे अपनाते हैं, तुझे हम पकड़ना चाहते हैं, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।